पृष्ठ संख्या 113। वे मानते हैं कि अगर जनता के जीवन में संघर्ष और दुख है तो उस वास्तविकता को झुठलाना गलत है, लेकिन वे यह भी जानते हैं कि दुख के तम में जीवन ज्योति जला करती है। वह किसान जीवन की करुण कहानी नहीं कहते, उसके स्वाभिमान की रक्षा को महत्व देते हैं। उनका किसान अभाव में जीता है, लेकिन अभाव से दबता नहीं। उनकी कविता में किसान जीवन का यथार्थ सच्चे और खरे रूप में है, न वह भावुकता के उच्छ्वास में डूबा है, न विचारधारा के आग्रह से ढका है। ऐसा यथार्थवाद अधीर पाठकों को बेचैन करता है। त्रिलोचन की कविता के बारे में यह कहना काफी नहीं है कि वह किसानों के जीवन संघर्ष की कविता है। यह भी देखना जरूरी है कि वह किसान जीवन के यथार्थ को किस दृष्टि से देखते और चित्रित करते हैं। हिंदी में किसान जीवन के कवियों की कमी नहीं है, उनमें से अधिकांश कवि मध्यवर्गीय दृष्टि से किसान जीवन के यथार्थ को देखते हैं। वे कभी समय की मांग और कभी बौद्धिक सहानुभूति के कारण किसान जीवन की कविता लिखते हैं। ऐसी कविताओं में कहीं कवि तटस्थ दर्शक की तरह होता है तो कहीं किसानों का वकील। इनसे भिन्न मध्यवर्गीय दृष्टि के कवि हैं जो किसान जीवन की दयनीयता से द्रवित होकर उसकी व्यथा कथा कहते हैं, या किसान जीवन की सरलता, सादगी और पवित्रता का गौरवगान करते हैं। त्रिलोचन ऐसे कवि नहीं हैं। उनकी दृष्टि एक सजग किसान की दृष्टि है, जो उस जीवन को जीते, देखते, सुनते और समझते हुए कवि को मिली है। इसलिए उसमें किसान जीवन से आत्मीयता और तादात्म्य है, लेकिन उस जीवन में मौजूद रूढ़ियों की आलोचना भी है। उनकी दृष्टि किसान जीवन की समग्रता को देखती है, वह उस जीवन की शक्ति के स्रोतों की खोज करती है तो जड़ता की जड़ों पर प्रहार भी करती है। त्रिलोचन इसी सजग किसान दृष्टि से प्रकृति, समाज और विश्व को देखते हैं। मानवीय संबंधों और भावों के उनके बोध में भी वही दृष्टि सक्रिय रहती है। उनकी कविता में किसान जीवन के विभिन्न पक्षों के चित्र हैं। वे चित्र अलग-अलग हैं, फिर भी उनमें संबंध है और उस संबंध से किसान जीवन की लय उभरती है। मध्यवर्गीय मानसिकता के कवियों की कविता में किसान बहुत कुछ करता है, लेकिन वह खेती करता नहीं दिखाई देता। त्रिलोचन सबसे पहले किसान को किसान के रूप में, जीवन के लिए प्रकृति से लड़ते हुए किसान के रूप में चित्रित करते हैं। है धूप कठिन सिर ऊपर, थम गई हवा है जैसे दोनों दूबों के ऊपर, रख पैर खींचते पानी उस मलिन हरी धरती पर। पृष्ठ संख्या 114। मिलकर वे दोनों प्राणी दे रहे खेत में पानी। ऐसा चित्र केवल सुनी सुनाई बातों के आधार पर कल्पना के सहारे चित्रित नहीं किया जा सकता। इसके लिए सहृदयता भी काफी नहीं है, उस जीवन से गहरा परिचय चाहिए। इससे भिन्न एक चित्र में किसान जीवन का दूसरा पक्ष है। ऊपर से चित्र में पति के साथ घाम शीत सहती हुई जो खेत में पानी दे रही है, वह किसी दिन बहू बनकर पति के घर आई होगी। ऐसे अवसर पर किसान के जीवन में और घर में जो उत्सव और उल्लास आता है, उसकी अभिव्यक्ति त्रिलोचन ने की है। लेकिन उनकी सहृदयता उस भीड़ भाड़ से अलग, आशंका, भय और संकोच में डूबी हुई बहू के पास पहुंच जाती है। कांपती सुख से कहीं बैठी अकेली, साधती होगी बहू कुछ भाव के स्वर, आज मनसा इन सबों की गीत की पहली कड़ी ही गा रही है, गा रही है, गा रही है। कुछ कवि किसान को एक धारणा या विचार मात्र मानते हैं और कविता में उस पर बहस करते हैं। त्रिलोचन किसानों को जीते जागते मानव समुदाय के रूप में देखते हैं। किसानों में आर्थिक स्थिति के अनुसार अनेक स्तर हैं, कई तरह के भेद हैं। त्रिलोचन की कविता में गरीबी, शोषण और उत्पीड़न के शिकार किसान हैं। उनकी कविता में सबसे अधिक खेतिहर मजदूर आते हैं और उन खेतिहर मजदूरों में भी स्त्रियों की जीवन दशा पर उनका ध्यान अधिक जाता है। उनकी कविताओं में कुछ चरित्र हैं, वह सब ग्रामीण कारीगर, खेत मजदूर और स्त्रियां हैं। नगई महरा, भुरई केवट, मंगल, निरहु, भिखरिया, अवतरिया, चंपा, सोना और सुकनी आदि ऐसे ही चरित्र हैं। इन चरित्रों के माध्यम से गांव में सबसे कठिन जिंदगी जीने वाले लोगों के ठोस अनुभवों की एक दुनिया साकार रूप में हमारे सामने आती है। ऐसे चरित्र या तो प्रेमचंद के कथा साहित्य में मिल सकते हैं या नागार्जुन के काव्य संसार में। ऐसे चरित्रों को कविता में ले आने वाले कवि की सामाजिक चेतना और वर्ग दृष्टि के बारे में अलग से कुछ कहना अनावश्यक है। त्रिलोचन जिस जनपद के कवि हैं, वहाँ के गरीब किसान और खेत मजदूर आर्थिक तंगी के दिनों में किसी बड़े शहर में जाकर मजदूरी करते हैं। गांव में पत्नी अकेली रह जाती है। त्रिलोचन ने दो कविताओं में परदेशी मजदूर और गांव में रहने वाले उसकी पत्नी के मन की गहराई में उतरकर उनकी भावनाओं की थाह लेने की कोशिश की है। पृष्ठ संख्या 115। एक कविता है परदेशी के नाम पत्र और दूसरी है सचमुच इधर तुम्हारी याद। तो पहले परदेशी के नाम पत्र का एक अंश पढ़िए। स्वस्ति श्री सर्व उपमा जोग बाबू रामदास को, और वह बछिया कोराती है यहाँ, जो तुम होते देखो कब व्याती है। तुम्हें गांव की क्या कभी याद नहीं आती है? आती तो आ जाते, मुझको विश्वास है। थोड़ा लिखा समझना बहुत, समझदार के लिए इशारा ही काफी है। वैसे तो पूरा पत्र पढ़ने पर भी, ब्रैकेट में पत्र भी कहीं आधा पढ़ा जाता है, ब्रैकेट बंद, इस कविता का मर्म समझना संभव है। फिर भी जो अंश सामने है उससे स्पष्ट है कि गांव की बोली, भाषा, मुहावरे और इशारों का उपयोग करते हुए कवि परदेशी की पत्नी की भावनाओं को व्यक्त करने में सफल है। अब इस पत्र का जवाब भी पढ़ लीजिए। सचमुच इधर तुम्हारी याद तो नहीं आई। झूठ क्या कहूँ, पूरे दिन मशीन पर खटना, बासे पर आकर पड़ जाना और कमाई का हिसाब जोड़ना, बराबर चित उचटना, इस उस पर मन दौड़ना, फिर उठकर रोटी करना, कभी नमक से कभी साग से खाना। धीरज धरो, आजकल करते तब आऊँगा जब देखूँगा अपना घर कुछ कर पाऊँगा। परदेशी मजदूर के पत्र में उसकी कठिन जिंदगी और मन की दशाओं को जिस कुशलता से प्रकट किया गया है, वह केवल त्रिलोचन ही कर सकते हैं। यह उनकी यथार्थवादी कला का एक उदाहरण है। आधुनिकतावाद के दौर में मध्यवर्गीय व्यक्ति के परायापन, एलियनेशन को कविता और कहानी में बहुत फेंटा गया, लेकिन मजदूर का परायापन किसी रचना में दिखाई नहीं दिया। मार्क्स ने लिखा है कि मजदूर परायापन की प्रक्रिया का शिकार होकर धीरे धीरे अपने परिवार और मानवीयता से भी अलग हो जाता है। इस कविता में मजदूर अपने परिवार से विच्छिन्न हो गया है। अभी उसमें परिवार से लगाव बचा है, मनुष्यता बची है, लेकिन कब तक परायापन पृष्ठ संख्या 116 की प्रक्रिया में पड़े मजदूर की भौतिक और मानसिक स्थितियों की ऐसी अभिव्यक्ति हिंदी के किसी दूसरे कवि ने की है? किसानों मजदूरों की जिंदगी की त्रासद स्थितियों को गहराई से महसूस करने वाला कवि ही यह लिख सकता है। हाथों के दिन कब आएंगे, कब तक आएंगे, यह कोई नहीं बताता। जैसे प्रकृति के बिना किसान का जीवन अधूरा होता है, वैसे ही प्रकृति की उपेक्षा करने वाली किसान जीवन की कविता भी अधूरी होगी। यह बात किसान जीवन की समग्रता का कवि जानता है। प्रकृति किसान जीवन का अंग है, उससे किसान का संबंध मनमाने की बात नहीं है, अस्तित्व की अनिवार्यता है। त्रिलोचन का किसान मन प्रकृति में खूब रमता है। उनके यहाँ प्रकृति किसान जीवन के अंग के रूप में है और उससे स्वतंत्र भी। उसका आकर्षक सौंदर्य है और विस्मयकारी रूप भी। सावन की बरसात का संगीत है और भादों का प्रचंड मेघ गर्जन भी। प्रकृति से सहज आत्मीयता है और कठिन संघर्ष भी। प्रकृति से किसान जीवन का ऐसा ही नाता है। ऋतुओं के बदलने के साथ किसान का जीवन क्रम बदलता है। त्रिलोचन ने विभिन्न ऋतुओं में बदलते किसान जीवन का चित्रण किया है। उन्हें वर्षा और वसंत विशेष प्रिय हैं। एक से किसानों को जीवन मिलता है और दूसरे से जीवंतता मिलती है। उनकी कविता में वर्षा के अनेक रूपों के चित्र हैं। एक है भादों की रात में यह वर्षा, भरी रात भादों की, पथ लपका वह कौंधा, दीप्ति भर उठी आंखों में इतनी, फिर हम तुम कुछ भी पकड़ न सके, ढीठ से छाया चौंधा, तड़ तड़ तड़त तड़ाण, ध्रा ध्राण ध्राण, ध्रुण ध्रुहुम, रिमझिम रिमझिम, छक 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 छक, सर 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 सर, चम चम, चमक धमाके घन के उत्सव निस्मत। और अब इससे एकदम भिन्न वर्षा के संगीत और चित्र झापस कविता में। आठ पहाड़ की टिप टिप सड़क भीग गई है, पेड़ों के पत्तों से बूंदे गिरती हैं टप टप, हवा सरसराती है, चिड़ियाँ पंख समेटे यहाँ वहाँ बैठी हैं। वर्षा के ये दोनों चित्र एक दूसरे से भिन्न हैं। दोनों में गति और ध्वनि को मूर्त करने वाली शब्द योजना और भाषिक संरचना भी अलग अलग है। इन चित्रों से साबित होता है कि त्रिलोचन रूप के ही नहीं, गति और ध्वनि के भी चित्रकार हैं। यह उनकी यथार्थवादी कला का एक और नमूना है। पृष्ठ संख्या 117। त्रिलोचन प्रकृति के रूप और प्रभाव दोनों का ध्यान रखते हैं, इसलिए उनकी प्रकृति की कविताएं कहीं भी मानवीय संदर्भ से कटी हुई नहीं है। ऐसी कविताओं में जातीय जीवन के प्राकृतिक परिवेश का उनका बोध प्रकट होता है। ये कविताएं उनकी रचनाशीलता के देश काल का पता बताती हैं। उनकी प्रकृति की कविताओं में रूप, रस, गंध और ध्वनि का संसार कितना समृद्ध है, यह जानने के लिए वर्षा संबंधी कविताओं के साथ मेहंदी और चांदनी, उत्सव, धूप सुंदर, धूप में जग रूप सुंदर, फूलों की चांदनी, नीम में जो आई है, कटहल के फूलों की लहरों ने रोका था, गेहूं जौ के ऊपर सरसों की रंगीनी जैसी कविताओं को पढ़ना जरूरी है। इन कविताओं में आत्मपरकता भी है, लेकिन उससे कहीं भी रूप, रस, गंध और ध्वनि का स्वरूप खंडित और विकृत नहीं हुआ है। वह आत्मपरकता प्रकृति से मनुष्य के आत्मीय संबंध की अनुभूति जगाती है। उनकी कविताओं में अंधकार लगभग नहीं है, धूप, चांदनी, उषा और किरणों का प्रकाश है। उन्होंने कहीं कहीं अत्यंत सहज ढंग से प्रतीक पद्धति का हल्का सहारा लेकर प्रकृति के रूपों और क्रिया व्यापारों के माध्यम से जीवन स्थितियों की व्यंजना की है। एक प्रमाण इस कविता में देखिए। पीपल के पत्ते ने जो मुंह खोला खोला, त्यों चटाक से लगा तमाचा आकर लूका, झेल गया वह भी आखिर बच्चा था भूखा, लेकिन जिसने देखा उसका धीरज डोला, बैठ कलेजा गया तड़प कर कोकिल बोला, कुंव कुंव मिले भले ही आधा टूका, लेकिन ऐसा ना हो रात चले जो चूका, उसको दुख ने आकर बादल फिर फिर बोल तोला, सबको नहीं नैनिहालों को अगर बचा दे तो लू का डर नहीं जहाँ चाहे आ जाए। ऐसी कविताएं साबित करती हैं कि प्रकृति की कविता में भी प्रगतिशील सामाजिक दृष्टि हो सकती है। जीवन संघर्ष की कविता भी मुक्ति संघर्ष की प्रेरणा दे सकती है। कुछ कवि प्रकृति का वर्णन करते हैं, कुछ उसकी व्यंजना करते हैं, लेकिन त्रिलोचन प्रायः प्रकृति का चित्रण करते हैं। जो व्यक्ति वर्णन, व्यंजना और चित्रण में अंतर नहीं जानता होगा, वह त्रिलोचन की कला को ठीक ठीक नहीं पहचान पाएगा। पृष्ठ संख्या 118। चित्रण के लिए प्रकृति के गहरे लगाव के साथ साथ उसके स्थिर और गतिशील रूप रंग की सूक्ष्मताओं का तल्लीनता से निरीक्षण भी आवश्यक है। चित्रकार माइकल एंजिलो की तरह त्रिलोचन भी आसमान में मेघों के बनते मिटते चित्रों को तल्लीनता से देखते हैं। कभी कभी उन्हें मन में साध कर शब्दों में उतारते भी हैं। संध्या ने मेघों के कितने चित्र बनाए, हाथी, घोड़े, पेड़, आदमी, जंगल, क्या क्या नहीं रच दिया, और कभी रंगों की क्रीड़ा की आकृतियां नहीं बनाई, कभी चलाए झीने से बादल जिनमें चटकीली लाली उभर उठी थी, जिनकी आभा हरियाली पर थिरक उठी थी, जाते जाते क्षितिज परी पर सूरज ने सोना बरसाया, छाया काली बढ़ने लगी, रंग धीरे धीरे फिर बदले पेंसिल के रेखा चित्रों से बादल छाए। सचमुच त्रिलोचन के सानेट आगरा के किले के उस नग के समान है जिसमें पूरा ताजमहल प्रतिबिंबित होता है। किसी सानेट के एक अंश को उद्धृत करना उस नग को तोड़कर उसके एक टुकड़े को देखना है। उनके सानेट ब्रैकेट में और दूसरी अच्छी कविताओं ब्रैकेट बंद की संरचना इतनी सुघटित होती है, पूरे वाक्य के साथ लय और छंद का विन्यास इतना अवयविक होता है कि किसी एक अंश से अलग करना उसके साथ ज्यादती लगती है। त्रिलोचन चित्रण कला प्रकृति में सीखते हैं, लेकिन यह कला सार्थक तब होती है जब वे मानव जीवन और मानव चरित्रों का चित्रण करते हैं। त्रिलोचन की कविता के भावलोक की चर्चा तब तक अधूरी रहेगी जब तक उनकी प्रेम कविताओं पर कुछ बात न होगी। उनके संग्रहों में असंख्य प्रेम कविताएं हैं। हर तरह की रूढ़ि और रीति से मुक्त प्रेम की कविताएं प्रगतिशील कवियों में या तो शमशेर ने लिखी हैं या त्रिलोचन ने। प्रेम के बारे में उनका दृष्टिकोण एकदम स्पष्ट है। प्यार करो तो प्यार करो क्या आगा पीछा, या चाहे जो समझे यह दुनिया मैंने तुमको प्यार किया है। कोई दुविधा नहीं, किसी की परवाह नहीं। इस दृष्टिकोण में रोमांटिक कवियों जैसी मुक्ति चेतना है, लेकिन प्रेम कल्पना में नहीं यथार्थ के धरातल पर विकसित होता है। यह प्रेम जीवन जगत से दूर एकांत में नहीं ले जाता, वह जीवन की लय पैदा करता है। जगत जीवन का प्रेमी बनाता है। यहाँ प्रेम शौक नहीं है, वह जीवन की अनिवार्यता है। आज मैं अकेला हूँ, अकेले रहा नहीं जाता। पृष्ठ संख्या 119। जीवन मिला है यह, रतन मिला है यह, धूल में कि फूल में मिला है तो मिला है यह, मोल तोल इसका अकेले कहाँ नहीं जाता। जीवन की कठिनाइयों से यह अकेलापन जब और गहरा हो जाता है, तब लगता है कि बाँह गहे कोई, लहरों में साथ रहे कोई। प्रेम की अनुभूति में ऐसी गंभीरता और अभिव्यक्ति में निश्चलता घनानंद में मिलती है। इन प्रेम कविताओं में जीवन की लय में मानव मन की मुक्ति का राग मुखरित होता है। दुनिया भर के बड़े कवियों ने प्रेम को सामाजिक रूढ़िवाद और शास्त्रीय रीतिवाद से मुक्त करने के लिए लंबा संघर्ष किया है। यही नहीं, उन्होंने प्रेम को रूढ़िवाद और रीतिवाद के संघर्ष का माध्यम भी बनाया है। हिंदी कविता में ऐसे संघर्षों की लंबी गौरवशाली परंपरा है। आश्चर्य की बात है कि आजकल हिंदी में प्रेम कविता के बारे में एक रूढ़िवाद पनप रहा है, वह भी मार्क्सवाद के नाम पर। प्रेम को स्वकिया परकिया के खानों में बांटकर प्रेम कविता पर रीतिवादी ढांचा लादने की कोशिश हो रही है। कहा जा रहा है कविता में स्वकिया प्रेम ही प्रगतिशील है। फिर तो ऐसी प्रगतिशीलता का अगला कदम सती प्रथा का समर्थन ही होगा। प्रेम की कविता में अनुभूति की सच्ची और तन्मयता की जगह अगर स्वकीयपन को प्रगतिशीलता की कसौटी मान लिया जाए तो संस्कृत और हिंदी के अनेक महाकवियों के साथ दुनिया भर के रोमांटिक कवि प्रतिक्रियावादी साबित होंगे। त्रिलोचन सानेट के कवि माने जाते हैं। सानेट से उन्हें ख्याति मिली है और आलोचना भी। कई लोग चकित हैं कि एक विजातीय छंद में जातीय मन या भारतीय मन की कविता कैसे संभव हुई है। आश्चर्य तो यह है कि जो लोग सानेट की अभारतीयता पर उंगली उठाते हैं, वे उपन्यास और कहानी के बारे में ऐसे सवाल नहीं करते, जबकि ये विधाएं भी आधुनिक रूप में पश्चिम की देन हैं। अगर आज कोई सिनेमा को विदेशी कहकर उसकी आलोचना करे तो लोग क्या कहेंगे? यह भी एक विडंबना ही है कि जो रूपवाद के विरोधी हैं, वही त्रिलोचन के सानेट की अंतर्वस्तु की उपेक्षा करके उसके रूप के पीछे पड़े रहते हैं। लेकिन इन सब के साथ ही त्रिलोचन के सानेट की शक्ति और सौंदर्य को सराहने वाले भी हैं। रेणु को सानेट के कवि पृष्ठ संख्या 120 त्रिलोचन शब्द योगी लगते हैं और केदारनाथ अग्रवाल को शब्द साधक, शमशेर उनकी सहजता पर फिदा हैं। त्रिलोचन ने सानेट के अलावा दूसरे काव्य रूपों में भी लिखा है। गुलाब और बुलबुल गजलों का संग्रह है। दुष्यंत कुमार की गजलों के बाद हिंदी में गजल की बाढ़ आ गई है। इस बाढ़ में लोग उस निर्झर को भूल गए हैं जो गुलाब और बुलबुल में है। उनके यहाँ मुक्त छंद के साथ साथ गद्य कविता भी है। चैती और अर्घान में ऋचाओं की शैली में कुछ अत्यंत छोटी कविताएं हैं। इन सबसे अलग नगई महरा जैसी लंबी कविता है जो हिंदी की लंबी कविताओं की परंपरा में अनेक कारणों से विशिष्ट है। उसमें लंबी कविता को मिथक, फैंटेसी, रूपक और अमूर्तन के घटाटोप से मुक्त करके जनजीवन के यथार्थ और ठोस अनुभवों की भूमि पर उतार लाने का सफल कलात्मक प्रयास है। उस कविता में जनजीवन के अनुभव उसी जीवन की भाषा में यथार्थवादी रचाओं के साथ व्यक्त हुए हैं। यथार्थ से भाषा का ऐसा आत्मीय संबंध केवल हरिजन गाथा नागार्जुन में दिखाई देता है। त्रिलोचन ने नगाई महाराज को लंबी कविता का नायक बनाकर एक स्तर पर वही काम किया है जो गोदान में होरी को लाकर प्रेमचंद ने किया था। त्रिलोचन घटनाओं के कवि नहीं हैं, वे मूल्यों के कवि हैं। उनकी कविता में सामाजिक राजनीतिक घटनाओं का चित्रण वर्णन बहुत कम है। मानव जीवन की दशाओं और अनुभवों की अभिव्यक्ति अधिक है। वे मानवीय अनुभवों और जीवन दशाओं की अभिव्यक्ति करते हुए संघर्ष, आस्था, जिजीविषा, प्रेम, न्याय और स्वतंत्रता जैसे जीवन मूल्यों की व्यंजना करते हैं। इन जीवन मूल्यों के बारे में वह कविता में वक्तव्य भी देते हैं। लेकिन कविता वही होती है जहाँ मूल्य या तो जीवन के अनुभवों के बीच व्यक्त होते हैं या वक्तव्य के पीछे मंतव्य में रहते हैं। घटनाओं की कविता हमारे सामने की वास्तविकता का बोध कराती है, इसलिए वह जल्दी मन को छूती है। मूल्यों की कविता सतह के नीचे छिपी सच्चाइयों को पहचानने की अंतर्दृष्टि देती है, इसलिए वह पाठकों से धैर्य की मांग करती है, धीरे धीरे विवेक को प्रभावित करती है। यही कारण है कि त्रिलोचन की कविता कुछ देर से पाठकों के मन में जगह पा सकी। त्रिलोचन की कविता हमारे सामने एक महत्वपूर्ण सवाल रखती है कि आज हम जिन परिस्थितियों का सामना कर रहे हैं उसमें कौन सी कविता सार्थक भूमिका निभा सकती है। आजकल जनता की चेतना पर लगातार संचार माध्यमों का हमला बढ़ रहा है। उसकी अनुभूति, कल्पना और सोच को एक खास ढांचे में ढालने की कोशिश हो रही है। यहाँ मनुष्य लोहा, कोयला आदि की तरह एक संसाधन मान लिया गया है। पृष्ठ संख्या 121, जिसका शोषण व्यवस्था के अस्तित्व के लिए अनिवार्य हो रहा है। इस व्यवस्था में मनुष्य की मनुष्यता खतरे में है। यहाँ आदमी को रूढ़ियों और बर्बर आदिम प्रथाओं की आग में झोंका जा रहा है। सत्ता क्रमशः अधिक खूंखार और दमनकारी होती जा रही है और जनवादी शक्तियाँ फूट और बिखराव की स्थिति में पड़ी हैं। ऐसी स्थिति में सबसे पहले उस कविता की जरूरत है जो पाठकों को प्रगतिशील जीवन मूल्यों के प्रति सचेत बनाए और उनकी रक्षा के लिए संघर्ष में आस्था जागे। इसलिए आज त्रिलोचन की कविता विशेष प्रासंगिक हो गई है। वह कविता संचार माध्यमों के हमले से जन चेतना को भ्रमित होने से बचा सकती है। मूल्यों की कविता ही उस चेतना के विकास की भूमिका तैयार करती है जो रेणु के शब्दों में समाज को मानवीय और मनुष्य को सामाजिक बनाने का संकल्प लेती है। उस चेतना को शोषक व्यवस्था और दमनकारी सत्ता के विरुद्ध संघर्ष की प्रेरणा देने वाली कविताओं की भी आज जरूरत है। यह काम वही कविता कर पाएगी जो वर्तमान व्यवस्था की वास्तविक चरित्र को उघाड़ कर जनता के सामने रखती है और आज के जन संघर्षों से जुड़कर उनके विकास में सहायक बनती है। ऐसी कविता नागार्जुन लिखते हैं। आज से 40 वर्ष पहले के जन संघर्षों और आंदोलनों की कविताओं का ऐतिहासिक महत्व है, लेकिन आज के संदर्भ में उनकी प्रासंगिकता संदिग्ध ही है। तत्कालिकता घटनाओं की कविता का एक बड़ा गुण है, लेकिन वही उनकी आयु के लिए खतरा भी है। 1948 की क्रांति के बाद किसी ने एंगेल्स से पूछा कि 1948 की क्रांति की कविताएं कहाँ गईं। एंगेल्स ने जवाब दिया, वह सब अपने समय के राजनीतिक पूर्वाग्रहों के साथ मर गईं। राजनीति के तत्कालिक आग्रहों और कार्यनीतियों का अनुगमन करने वाली कविताओं का प्रायः यही हाल होता है।